मरकुस की मार्फत इंजील बाब 10। फिर ईसा उस जगह को छोड़कर यहूदिया के इलाके में और दरियाए यर्दन के पार चला गया। वहां भी हुजूम जमा हो गया। उसने उन्हें मामूल के मुताबिक तालीम दी। कुछ फरीसी आए और उसे फंसाने की गर्ज से सवाल किया, क्या जायज है कि मर्द अपनी बीवी को तलाक दे? ईसा ने उनसे पूछा, मूसा ने शरीयत में तुमको क्या हिदायत की है? उन्होंने कहा, उसने इजाजत दी है कि आदमी तलाकनामा लिखकर बीवी को रुख्सत कर दे। ईसा ने जवाब दिया, मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली की वजह से तुम्हारे लिए यह हुक्म लिखा था, लेकिन इब्तिदा में इंसान के साथ ऐसा नहीं था। दुनिया की तखलीक के वक्त अल्लाह ने उन्हें मर्द और औरत बनाया, इसलिए मर्द अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी के साथ पैवस्त हो जाता है, वो दोनों एक हो जाते हैं। यूं वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक दो नहीं रहते बल्कि एक हो जाते हैं। तो जिसे अल्लाह ने खुद जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। किसी घर में आकर शागिर्दों में ये बात दोबारा छिड़ी। ईसा से मजीद दरियाफ्त किया। उसने उन्हें बताया, जो अपनी बीवी को तलाक देकर किसी और से शादी करे वो उसके साथ जिना करता है, और जो औरत अपने खाविंद को तलाक देकर किसी और से शादी करे वो भी जिना करती है। एक दिन लोग अपने छोटे बच्चों को ईसा के पास लाए ताकि वो उन्हें छुए, लेकिन शागिर्दों ने उनको मलामत की। ये देखकर ईसा नाराज हुआ। उसने उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें न रोको, क्योंकि अल्लाह की बादशाही इन जैसे लोगों को हासिल है। मैं तुमको सच बताता हूँ, जो अल्लाह की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल न करे वो उसमें दाखिल नहीं होगा। ये कहकर उसने उन्हें गले लगाया और अपने हाथ उन पर रखकर उन्हें बरकत दी। जब ईसा रवाना होने लगा तो एक आदमी दौड़कर उसके पास आया और उसके सामने घुटने टेक कर पूछा, नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि अबदी जिंदगी मीरास में पाऊं? ईसा ने पूछा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं सिवाय एक के, और वो है अल्लाह। तू शरीयत के अहकाम से तो वाकिफ है, कत्ल न करना, जिना न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, धोखा न देना, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। आदमी ने जवाब दिया, उस्ताद, मैंने जवानी से आज तक इन तमाम अहकाम की पैरवी की है। ईसा ने गौर से उसकी तरफ देखा, उसके दिल में उसके लिए प्यार उभर आया। वो बोला, एक काम रह गया है, जा अपनी पूरी जायदाद फरोख्त करके पैसे गरीबों में तकसीम कर दे, फिर तेरे लिए आसमान पर खजाना जमा हो जाएगा, इसके बाद आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर आदमी का मुंह लटक गया और वो मायूस होकर चला गया, क्योंकि वो नहायत दौलतमंद था। ईसा ने अपने इर्द गिर्द देखकर शागिर्दों से कहा, दौलतमंदों के लिए अल्लाह की बादशाही में दाखिल होना कितना मुश्किल है। शागिर्द उसके ये अल्फाज सुनकर हैरान हुए, लेकिन ईसा ने दोबारा कहा, बच्चों, अल्लाह की बादशाही में दाखिल होना कितना मुश्किल है, अमीर के अल्लाह की बादशाही में दाखिल होने की निस्बत ज्यादा आसान ये है कि ऊंट सुई के नाके में से गुजर जाए। इस पर शागिर्द मजीद हैरतजदा हुए और एक दूसरे से कहने लगे, फिर किसको निजात मिल सकती है? ईसा ने गौर से उनकी तरफ देखकर जवाब दिया, ये इंसान के लिए तो नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह के लिए नहीं, उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। फिर पतरस बोल उठा, हम तो अपना सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिए हैं। ईसा ने जवाब दिया, मैं तुमको सच बताता हूँ, जिसने भी मेरी और अल्लाह की खुशखबरी की खातिर अपने घर, भाइयों, बहनों, माँ बाप, बच्चों या खेतों को छोड़ दिया है, उसे इस जमाने में ईजा रसानी के साथ सौ गुना ज्यादा घर, भाई, बहनें, माए, बच्चे और खेत मिल जाएंगे, और आने वाले जमाने में उसे अबदी जिंदगी मिलेगी। लेकिन बहुत से लोग जो अब अव्वल हैं उस वक्त आखिर होंगे, और जो अब आखिर हैं वो अव्वल होंगे। अब वो यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे थे और ईसा उनके आगे आगे चल रहा था। शागिर्द हैरतज़दा थे जबकि उनके पीछे चलने वाले लोग सहमे हुए थे। एक और दफा 12 शागिर्दों को एक तरफ ले जाकर ईसा उन्हें वो कुछ बताने लगा जो उसके साथ होने वाला था। उसने कहा, हम यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ इब्ने आदम को रहनुमा, इमामों और शरीयत के उलमा के हवाले कर दिया जाएगा। वो उस पर सजाए मौत का फतवा देकर उसे गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जो उसका मजाक उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसको कोड़े मारेंगे और उसे कत्ल करेंगे, लेकिन 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। फिर जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना उसके पास आए। वो कहने लगे, उस्ताद, आपसे एक गुजारिश है। उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने जवाब दिया, जब आप अपने जलाली तख्त पर बैठेंगे तो हम में से एक को अपने दाई हाथ बैठने दें और दूसरे को बाई हाथ। ईसा ने कहा, तुमको नहीं मालूम कि क्या मांग रहे हो? क्या तुम वो प्याला पी सकते हो जो मैं पीने को हूँ, या वो बपतिस्मा ले सकते हो जो मैं लेने को हूँ? उन्होंने जवाब दिया, जी हम कर सकते हैं। फिर ईसा ने उनसे कहा, तुम जरूर वो प्याला पियोगे जो मैं पीने को हूँ, और वो बपतिस्मा लोगे जो मैं लेने को हूँ, लेकिन ये फैसला करना मेरा काम नहीं कि कौन मेरे दाई हाथ बैठेगा और कौन बाई हाथ। अल्लाह ने यह मकाम सिर्फ उन्हीं के लिए तैयार किया है जिनको उसने खुद मुकर्रर किया है। जब बाकी 10 शागिर्दों ने ये सुना तो उन्हें याकूब और यूहन्ना पर गुस्सा आया। इस पर ईसा ने उन सबको बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि कौमों के हुक्मरान अपनी रियाया पर रोब डालते हैं और उनके बड़े अफसर उन पर अपने अख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम्हारे दरमियान ऐसा नहीं है। जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो सबका गुलाम बने, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान फिदिये के तौर पर देकर बहुतों को छुड़ाए। वो यरूहो पहुंच गए, उसमें से गुजर कर ईसा शागिर्दों और एक बड़े हुजूम के साथ बाहर निकलने लगा। वहां एक अंधा भीख मांगने वाला रास्ते के किनारे बैठा था, उसका नाम बर्तिमाई, तिमाई का बेटा था। जब उसने सुना कि ईसा नासरी करीब ही है तो वो चिल्लाने लगा, ईसा इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम करें। बहुत से लोगों ने उसे डांट कर कहा, खामोश, लेकिन वो मजीद ऊंची आवाज से पुकारता रहा, इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। ईसा रुक कर बोला, उसे बुलाओ। चुनांचे उन्होंने उसे बुलाकर कहा, हौसला रख, उठ, वो तुझे बुला रहा है। बर्तिमाई ने अपनी चादर जमीन पर फेंक दी और उछलकर ईसा के पास आया। ईसा ने पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने जवाब दिया, उस्ताद, ये कि मैं देख सकूं। ईसा ने कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है। जो ही ईसा ने यह कहा, अंधे की आंखें बहाल हो गईं और वो ईसा के पीछे चलने लगा।